بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. کوئی مصیبت تمہیں ایسی نہیں پہنچتی، فی الارض زمین میں، زمین میں سے کون سی مصیبتیں ہوتی ہیں؟ زلزلہ، طوفان، سیلاب، کھیتوں کھلیانوں کا تباہ ہو جانا، یہ سب چیزیں زمین کی مصیبتیں ہیں نا. کوئی مصیبت جو زمین میں پہنچے تمہیں، یا تمہارے اپنے نفسوں میں، نفسوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ بیماری آ گئی، کوئی فاقہ آ گیا، کوئی دکھ تکلیف آ گئی، کوئی نقصان آ گیا، ایسا جانی مالی نقصان کوئی ایسا آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی مصیبت، چاہے وہ زمین کی ہو، چاہے وہ کوئی ایسا حادثہ تمہارے ساتھ پیش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی کچھ آ جائے، سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ پہلے سے پلانڈ ہے، پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. اس سے پہلے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو، ان نبر آہا، اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں اس کو، کس کو؟ ہاں کی زمین کس طرف جا رہی ہے؟ مصیبت کی نا. اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں درج ہے. اب وہ پتہ ہے نا، پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، 50,000 ایئرز پہلے، آسمان اور زمین کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ قلم چل پڑے. وہ قلم چل پڑا اللہ تعالیٰ کا جو علم تھا اس کے مطابق، میرا قلم کو تو نہیں کوئی بات پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو جو باتیں تھیں ساری قلم نے لکھ دی. اب قلم خشک ہو چکے ہیں، قیامت تک جو جو ہونا ہے سب لکھا گیا. وہ ساری چیزیں، اس میں جو مصیبت بھی آنی ہے وہ بھی سب لکھی گئی ہے. کوئی تجارت میں گھاٹا ہونا ہے، کسی عزیز رشتہ دار پیارے کی موت ہونی ہے، کسی کی زندگی ہونی ہے، کسی کو بیماری پہنچنی ہے، کسی کو فاقہ ملنا ہے، کسی کو کوئی دکھ تکلیف ہونی ہے، کسی کو کوئی ذہنی جسمانی ایسی پریشانی آنی ہے، سب مصیبتیں جتنی بھی ہیں سب اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، پلانڈ ہیں. لکھی ہوئی کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ کہ اللہ کے علم میں ہے آلریڈی، ہر شے کے اوپر اس کا علم محیط ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ تمہیں مشکل لگتا ہوگا لیکن اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، یہ اللہ کے لیے مشکل چیز نہیں ہے. کیونکہ ہم نے جب مان لیا کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو پھر ہم نے یہ مان لیا نا کہ اس کے علم میں ہے یہ ساری باتیں، جتنی بھی باتیں ہونے والی ہیں، جتنے بھی کام ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ سب اس کے علم میں آلریڈی موجود ہے، اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں، اب جب انسان کو یہ پتا چل جاتا ہے نا کہ سب چیز اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں ہے، سب چیز اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، پھر اس کے بعد اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ میری تقدیر کے اندر ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے تمہیں بتائی جا رہی ہے بات، لِکَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس لیے کہ تم حتر جے دکھ نہ کرو اس بات کے اوپر جو نقصان تم کو پہنچا. اگر تم سے کوئی چیز کھو جاتی ہے تو اب تم اس کے غم کے اندر پاگل نہ ہو جائے، دنیا کے نقصان کے اوپر ایسا نہ غم کھا کے بیٹھ جاؤ کہ باقی ساری نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہی بھول جاؤ. کبھی کبھی ایک مصیبت آتی ہے، انسان اس مصیبت کے اندر اتنا اپنے آپ کو ہلکان کر دیتا ہے اس کے غم میں کہ اس کو ساری جو باقی نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں کوئی بھی نہیں یاد رہتی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نہیں، تم اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بات بتائیے تاکہ تم حد درجے غم بھی نہ کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ ہی تم اتنے خوشی میں آپے سے باہر ہو جاؤ اس چیز کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے. کیونکہ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر سے غافل کر دیتی ہیں، یا تو اس کو اتنا عیش اور اتنی خوشیاں ملتی ہیں کہ انسان اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، और या फिर कोई मुसीबत और ऐसा गम आता है कि इंसान इतना मायूस हो जाता है, तब भी अल्लाह से दूर हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा लोगों को कहते हुए कि हाय अब तो मैं, ये मेरे साथ हो गया, अब उसके बाद से मैंने नमाज पढ़नी भी जो छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि ये मेरे ऊपर क्यों मुसीबत आई, क्यों अल्लाह ने भेजी। यानी नऊज़ु बिल्लाह वो अल्लाह तआला से नाराजगी का एक इजहार करते हैं कि जो है ना, जैसे कि पता नहीं अल्लाह तआला को इसकी नमाजों से ही कोई फर्क पड़ना था, तो वो ये सारी अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं इस तरह से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इसलिए तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम राजी बा रजा रहो, तुम्हें ये पता रहे कि ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में है, तुम्हारे अंदर शिकायत ना पैदा हो। और देखिए गुलामी का मकाम भी यही है, ये गुलाम को कैसा होना चाहिए अपने आका के सामने, हाँ कैसे उसको सर झुकाना चाहिए, सरे तस्लीम खम हो जो मिजाजे यार में आए, कि या अल्लाह जो भी तू करे, कोई तकलीफ भेजे, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, अल्लाह ताला मैं राजी हूं, मैं राजी हूं, जो जिसमें तू राजी है उसी में मैं राजी हूं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको रब क्या मानना, अगर उसकी रजा में ही राजी नहीं रहते, अगर उसके कोई भी मर्जी जो है उसको आप पसंद ही नहीं करते, लेकिन जो आपको महबूब होता है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो महबूब की तो हर एक बात ही पसंद होती है ना। अब जो रब की रजा को पसंद ना करे, कि रब का फैसला आया मुझे नहीं ये पसंद, अब उसके ऊपर इतना वावेला, इतनी शिकायत, इतना वो अपने आप को गम में मुब्तला कर दे, तो इसका मतलब तो ये कि वो राजी नहीं हुआ। राजी होना देखें सीखना है ना, सुभान अल्लाह। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखें कि जब आग आसमान को छू रही थी और वो मंजनीक में डाल के उनको फेंकने वाले थे, और उस वक़्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो बादलों का फरिश्ता रेडी है कि वो आके इसके ऊपर बारिश बरसाए और ये आग सारी बुझ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुझे नहीं उसकी ज़रूरत। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी खिदमात भी ऑफर की कि आप हुक्म दें तो ये आग ही नहीं के ऊपर उल्टा दी जाए। मैं नहीं, मुझे नहीं तुम्हारी ज़रूरत, क्या मेरे रब को मालूम है कि मुझे आग में डाला जाने वाला है। फरमाया हाँ उसको तो पता है। तो फरमाने लगे अगर फिर वो जलाने पर राजी है तो मैं जलने पर राजी हूँ। मेरे रब को पता है ना कि मैं इस तरह से जलने वाला हूं, अगर वो इस पे राजी है तो मैं भी राजी हूं। सुभान अल्लाह, उनका अल्लाह की रजा पे राजी होना, ऐसे तो नहीं ना खलीलुल्लाह बन गए। हमें इधर तो कोई कांटा भी चुभता है तो हमें शिकायतें और शिकवे और ऐसे गम में मुब्तला हो जाते हैं कि सारी जिंदगी की हर चीज ही छोड़ के अल्लाह को भी भूल जाते हैं, बस उसी गम को मनाते चले जाते हैं सारी जिंदगी। तो अल्लाह ताला ने बताया कि ये जब तुम्हें बात पता चल जाए कि सब चीज़ अल्लाह के इल्म में है, सब चीज़ उसके पास लिखी हुई है, ऐसा ही होना था, ऐसा ही तुम्हारी तकदीर में था, तो अब इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए रिजल्ट, कि अब तुमसे कोई चीज़ छिन जाए तो ऐसे ही गम में ना मुबतला हो जाता कि मरते चले जाओ, और कोई मिल जाए चीज़ तो खुशी से पागल ना हो जाओ। अच्छा हमें मिल जाए तो हम इतने खुशी से आपे से बाहर हो जाते हैं, उस वक्त भी आप देखें ये दोनों ना एक्सट्रीम इमोशंस है ना, गम और खुशी। खुशी मिलती है किसी की शादी होने लगे, ऐसे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी आप पूरा उसको थोड़ा सा इस चीज को जहन में लेकर आए कि लोग ऐसे हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं इनको क्या चीज मिल गई, और अब इसके बाद तो कोई फिक्र फाका, कोई गम, कोई परेशानी रह ही नहीं गई, आप पे से बाहर हुए चले जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, यानी मदहोश जैसे एक इंसान हो जाता है नाचने और गाने और इसके अंदर के जिस बिल्कुल इंसान दुनिया से बेगाना हो जाता है, ना रब याद रहता है, ना कोई नमाज याद है, ना कोई जिक्र याद है, ना कोई डर खौफ है कि पता नहीं अल्लाह ताला ये सब खैरियत के साथ हो जाए, या अल्लाह ताला कोई भी परेशानी ना, कुछ नहीं याद है, हर चीज मेरी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के इज़न से ही सब मामलात खैरियत से हो सकते, नहीं। तो वो इंसान खुशी में भी आपे से बाहर हो जाता है, गम में भी इंसान आपे से बाहर हो जाता है, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला सबको परेशानी और मुसीबतों से बचाए। लेकिन गम भी जब इंसान मनाने लगता है तो गिरेबान फाड़ देता है, तो दीवारों से टकरे मारने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, या फिर ऐसे डिप्रेशन में चला जाता है अगर उससे कोई चीज खो गई है या उसको नहीं मिली। क्यों नहीं ये हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ जैसा मेरी मर्जी थी? यानी खुद ही तो आप अपने खुदा बन गए फिर, आपको खुदा की क्या जरूरत है? आप तो अपने खुद ही खुदा हैं, आप तो खुद ही चाहते हैं कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसे ही हो। ये मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हुई? मैंने ऐसा प्लान किया था, ये तो ऐसा ही होना चाहिए था, और मेरी प्लानिंग पूरी नहीं हुई तो बस मैं बहुत ही ऐसे गम के अंदर हूं कि अब मैं गम से निकल ही नहीं रही। तो बंदे के मकाम पे रहें, बंदे का मकाम क्या है? कि वो मालिक की रजा में राजी रहता है, खुद खुदा ना बन जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना उलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? उनको कोई खौफ भी नहीं होता, कोई गम भी नहीं होता। खौफ हमेशा किन चीजों का होता है? अंदेशे, हाँ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आइंदा के, फ्यूचर के। इंसान को कितने सारे वो खदशात जो लाहक होते, वो इससे भी नहीं, वो ये भी नहीं उनको होता। और हुजन, ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हुज़न जो होता है वो पास्ट का होता है। कोई चीज़ हाय क्यों चली गई, हाय ये मेरा मामला क्यों बिगड़ गया, हाय मेरी प्लानिंग क्यों गारत हो गई, फलाना क्यों फौत हो गया, फलाना नुकसान क्यों हो गया, मेरे मुझे बीमारी क्यों लग गई, ये सारी जो कैफियात है ये हुज़न की हैं। तो जो अल्लाह का वली होता है ना, वो ना उसको खौफ होता है ना हुज़न, क्योंकि उसका रिश्ता जिस रब के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसका ताल्लुक, तो वो तो फिर रिलैक्स रहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई किसी की, किसी मसलन है कि आपकी किसी यहाँ के गवर्नर के साथ आपकी बहुत दोस्ती है और वो आपको बड़ा सपोर्ट करता है, अब उसके बाद आपको किसी चीज़ का अंदेशा रहेगा? आप तो आराम से चैन से रहेंगे कि भाई मेरी तो गवर्नर के साथ दोस्ती है, मेरी मुझे तो उसकी सपोर्ट हासिल है, मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है। अब ये तो छोटे छोटे लोग हैं जो रब को दोस्त बना लेता है ना, जिसको रब का साथ मिल जाए, जो उसके साथ दोस्ती लगा लेता है, उसके साथ ताल्लुक बना लेता है, वो कहाँ से डरेगा, उसको क्या खौफ है? उसके ऊपर कोई मुश्किल आती भी है तो वो कहता है कि मेरे रब की रजा इसी में है, मैं भी इसी में राजी हूँ। उसको कोई चीज़ जाने का गम नहीं है, कोई चीज़ मिलने की ऐसी खुशी नहीं है कि वो पागल हो जाए। और फरमाया जो ना मिले या जो नुकसान हो जाए उस पे ऐसे ना अफसोस करो, और जो मिल जाए उसके ऊपर ऐसे ना इतराना शुरू कर दो, क्योंकि वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। अल्लाह को नहीं पसंद है जो खुद पसंद होता है और जो फख्र जिताने वाला होता है। जब खुशी मिलती है तो हम कैसे खुद पसंदी का शिकार होते हैं, कैसे फख्र जिताते हैं, अकड़ अकड़ के चलते हैं, शेखियां बिगाड़ते हैं। अल्लाह को मोहब्बत नहीं है ऐसे लोगों से। फिर मैं अगेन, वो आप कहेंगे कि एक ही बात के ये पीछे पड़ गई हैं, लेकिन मैं कौन से मौक़ों के पर हम बहुत ज़्यादा खुशी का एक्सट्रीम मौका, इसलिए मैं बार बार, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आपे से बाहर होते हैं ना, वही शादी ब्याह के मौके पे आप देखें कितना फ़ख्र जताया जाता है, कितनी खुद पसंदी, शेखी खोरी कितनी आ जाती है, चाल ढाल में भी आ जाती है। और भी कोई खुशी मिल जाए, मसलन किसी की कोई जॉब बड़ी मिल गई है, कोई प्रोमोशन हो गई, या किसी को लॉटरी निकल आई, किसी को बहुत माल मिल गया, फिर देखिए, लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं है ऐसी चालें, अल्लाह को पसंद नहीं है ऐसे लोग जो अकड़ के चलने वाले हैं, जो फखर जिताने वाले हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि मेरे अंदर ईमान कितना है, कितना मेरे अंदर ईमान है, तो ये जरूर चेक करिएगा कि जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स जब आते हैं, किसी दिन लाइफ में अच्छे दिन भी आते हैं जब आपको बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, किसी दिन मुश्किल देश भी आते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, तो आप ज़रूर चेक करें कि आपका दिल कितना मुतासिर होता है मुसीबतों में, शोरोगुल परेशानी में, इतना आपे से बाहर होना, ये होता है खुशी के अंदर इतराहटें ख़त्म नहीं होती, क्या कैसे आपका बिहेवियर होता है। जो इन एक्सट्रीम रिएक्शन से बच गया ना, इसका मतलब उसी का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ मजबूत है, उसी का ईमान मजबूत है कि मेरी तकदीर में मेरे रब ने ये लिखा था, मैं इसी के ऊपर राजी हूँ, ये मेरे रब की के फैसले हैं,
ये उसकी तकदीर है। लेकिन हम सबका ईमान है ना कि जो मुश्किल आती है वो भी चाहे हमारे अपने गुनाहों की वजह से आ रही है या कुछ है, पर किसकी तरफ से आती है, किसका फैसला है। या तो आप ये कहें ना कि भाई नहीं, नाउज़ु बिल्ला, अल्लाह का फैसला नहीं, किसी और का फैसला है, तो शिरकी हो गया। लेकिन अगर आप समझते हैं ना कि अल्लाह का फैसला है, तो फिर इंसान उस पे राजी रहे, राजी बारजा रहे, यही ईमान है, यही यकीन है अल्लाह ताला के ऊपर। देखिए ईमान वालों को ही तो फिर जन्नत मिलनी है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक से जन्नत इससे भी ज्यादा करीब है जितना तुम्हारा शू लेस, तुम्हारे जूती का तस्मा, और इसी तरह जहन्नुम भी। इंसान पल पल में फैसले करता है, अपने रिएक्शन से, अपने एटीट्यूड से इस दुनिया में शो करता है कि वो किसके काबिल है। जन्नत भी बहुत करीब है, चाहे तो जन्नत के लिए अपने लिए फैसले कर ले और चाहे तो जहन्नुम के लिए कर ले, बहुत करीब है दोनों। यही हमारे बिहेवियर्स बताते हैं, इन मौके पे हमारे जो रिएक्शंस होते हैं ना वो बताते हैं, यहीं पे इम्तिहान हो जाया करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।